अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे यहाँ रमज़ान में उमूमन तरावी का बड़ा अहतमाम किया जाता है और आम तौर पर यह तस्वुर भी पाया जाता है कि गोया तरावी के बगैर रोज़ा ही कबूल नहीं होगा। लेकिन जब हम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इशा की नमाज़ के बाद तरावी अदा नहीं की थी। तो हम आज के प्रोग्राम में इसी मसले को उठाने की कोशिश करेंगे, इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि इसकी तारीख़ और इसकी शरीयत क्या है। हमेशा की तरह हमारे बहुत काबिल एहतराम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
तरावी आज का हमारा मौजू है गामदी साहब, बताएंगे। हम बड़े मज़हबी जोश और अकीदत के साथ तरावियों का अहतमाम किया जाता है जगह जगह, इसकी तारीख़ क्या है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन इबादात का पाबंद किया है उनका ज़िक्र कुरान में भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हैसियत से वो हमको मुंतकिल भी हुई हैं। ये बुनियादी तौर पर 6 नमाज़ें हैं। 5 नमाज़ें तो वही हैं जो हम सब पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ है, जोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लम के लिए कुरान मजीद हमें ये बताता है कि एक ज़ायद नमाज भी थी। उसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल में भी हुआ है और सूरह बनी इसराइल में भी। सूरह बनी इसराइल में जहाँ ज़िक्र हुआ है तो वहाँ अल्फाज ये हैं कि वह मिलल लैल फतहज्जुद भी नाफिलतलक, यानी रात को उठकर आप तहज्जुद का अहतमाम किया करें, ये आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 नमाज़ें पढ़ते थे, यानी तहज्जुद का भी पूरी तरह अहतमाम करते थे। तहज्जुद के बारे में कवानीन आम नमाज़ों से ज़रा मुख्तलिफ हैं, पहले उनको ज़रा एक नज़र देख लीजिए। पहली चीज़ यह है कि तहज्जुद हमेशा ताक अदद में पढ़ी जाएगी, यानी 3 रकतें, 5 रकतें, 7 रकतें, 9 रकतें, ये कभी 2 या 4 नहीं पढ़ी जाएगी, एक चीज़ यह है। दूसरा यह है कि आम नमाज़ों में तो ये किया गया है कि फजर, मगरब और इशा में हम बुलंद आवाज़ से किरात करते हैं और जोहर और असर में हम खामोशी से किरात करते हैं। तहज्जुद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ला तजहर सलाते का व ला तो खाफित बिहा, यानी इसमें ना आवाज़ ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त होनी चाहिए, ये दरमियान की आवाज़ में किरात करके पढ़ी जाएगी।
कोई ख़ास वजह?
वो वक्त ऐसा है। देखिए बात यह है कि ये इंसान सिर्फ मंतिक नहीं है, वो एक नफ्सियाती वजूद भी है। तो एक नफ्सियाती वजूद की हैसियत से वक्त की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो वक्त जिसमें हमने खुदा के साथ सरगोशी करनी है। हम जब आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, अपनी माई के साथ कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता बात की अपनी एक लताफत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बुलंद आवाज़ से एक मुकर्रर तकरीर कर रहा होता है तो उसका अपना एक मौका होता है। यानी मैं एक मजमा आम में अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। इसी तरह से हमने अगर कोई तफरी की मजलिस मुनक़द करनी हो तो आमतौर पर शाम के वक्त का इंतखाब करते हैं।
सही बात है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये दीन में भी मलहूज रखी जाती हैं, क्योंकि इंसान की नफ्सियात को, उसके जज्बात को मुतल्लिक होना चाहिए। तो तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसमें किरात ना तो ज़्यादा बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त आवाज़ से होनी चाहिए, दरमियान की आवाज़ में, जैसे आप अपने परवरदिगार से सरगोशियाँ कर रहे हैं, ये नौयत होनी चाहिए। रिसालत में आप सल्लम भी इसी तरह से तहज्जुद का अहतमाम करते थे, यानी 3 रकतें, 5 रकतें, 7 रकतें, ज़्यादा से ज़्यादा जो रकतें आपने पढ़ी वो 11 रकतें थी। बाद रवायतों में 13 रकतों का जिक्र भी आता है, लेकिन वो ऐसे ही थी कि जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर मगरिब की 3 रकतें पढ़ते हैं और उसके बाद 2 नफल पढ़ लेते हैं। तो चूंकि आप पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, तो कभी आपने ऐसा भी किया कि 11 रकतें पढ़ने के बाद फिर 2 नफल मज़ीद पढ़ लिए? तो ये रसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं कि रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी आप यही किया करते थे, तहज्जुद की नमाज। आप देखिए इसके बारे में कुछ सहाबा इकराम ने सवालात किए जहाँ से तरावी की तारीफ़ शुरू होती है। बस एक सवाल ये किया गया कि रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरा कुरान याद था और आप तरावी में तहज्जुद की नमाज़ में हज़रत के साथ कुरान मजीद पढ़ते थे और देर तक उसकी तलावत करते थे, कभी पूरी आधी रात, कभी 2/3 रात आप कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। तो सहाबा किराम को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर किसी को कुरान याद नहीं है तो क्या हम रकतों की तादाद बढ़ा सकते हैं? तो ये मालूम होता है कि इसकी भी इजाज़त दे दी गई। इसी तरह बाद लोगों ने यह सवाल किया कि हमारे लिए सुबह के वक्त उठ के, तहज्जुद का वक्त तो आप जानती है ना कि फजर की नमाज से पहले का वक्त है, उस वक्त उठ के नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो क्या हम इसको इशा के बाद पढ़ सकते हैं? यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फारिग होके क्या हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं? एक नमाज़ है ना जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है, जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया गया है, जिसका कुरान मजीद में जगह जगह जिक्र हुआ है। तो एक मुसलमान या एक बंदा मोमिन की हैसियत से ये तमन्ना पैदा हुई कि हम भी इसका अहतमाम करें। तो इसके बारे में सवालात फितरी तौर पर पैदा हुए, तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको सुबह उठने का इत्मीनान ना हो या ऐसी कोई मसरूफियत हो, कोई ये ख्याल करता हो कि मैं उस वक्त उठ के नहीं पढ़ सकूँगा तो वो इशा के बाद पढ़ लें।
पढ़
तो आप देखिए चंद चीज़ें बिल्कुल वाजे हो गई। तहज्जुद की नमाज एक नफल नमाज है, पहली बात। इसमें किरात ना बुलंद आवाज से की जाएगी ना पस्त आवाज से की जाएगी। इसकी रकतें हमेशा ताक होंगी, यानी तीन होंगी, पाँच होंगी, सात होंगी, नौ होंगी, ग्यारह होंगी। रिसालत में आपसे रस्म ने इजाज़त दे दी कि इसकी रकतें इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। सहाबाए किराम ने जब पूछा तो ये इजाज़त भी दे दी कि ये इशा के बाद पढ़ी जा सकती है। तो अब इसके बाद लोग इसको इसी तरीके से पढ़ने लग गए। कोई सुबह के वक्त उठ के पढ़ता जिस वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, कोई आधी रात में उठ के पढ़ना शुरू कर देता, कुछ लोग इशा के बाद पढ़ने लग गए। यानी ये हुजूर के ज़माने ही में तहज्जुद की नमाज तहज्जुद के वक्त पर भी पढ़ी जा रही थी और इशा के बाद भी पढ़ी जा रही थी। एक रात में ये हुआ कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन एतिकाफ़ में थे। एतिकाफ़ के लिए खैमा सा लगा दिया जाता था मस्जिद के सेन में, उससे आप बाहर निकले आधी रात के वक्त। मस्जिद में कुछ लोग भी थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे या कुछ इबादत कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने तहज्जुद की नमाज़, ये जहन में रखिए कि वही तहज्जुद की नमाज़ जो आप अपने खैमे में पढ़ते थे वो मस्जिद में बाहर निकल के पढ़ना शुरू कर दी।
अच्छा।
जैसे ही आपने पढ़ना शुरू की तो थोड़ी सी आप बुलंद आवाज़ से किरात भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, तो जो लोग इधर उधर खड़े हुए थे वो आपके पीछे आ गए। अच्छा, अगले दिन लोगों को बताना शुरू किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बाहर तशरीफ़ लाए थे और आपने नमाज़ पढ़ी थी, तो लोगों में बहुत शौक पैदा हुआ, मस्जिद भरना शुरू हो गई। दूसरे दिन भी जब यही हुआ तो तीसरे दिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ नहीं लाए और आपने फिर लोगों को फजर की नमाज़ के बाद ये कहा कि मुझे तुम्हारा शौक़ देखकर बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि कहीं ये नमाज़ भी तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तो तहज्जुद की नमाज ही है जिसको बाद के ज़मानों में लोगों ने तरावी की नमाज कहा। ये कोई अलग नमाज है ही नहीं,
बेसिकली ये तहज्जुद ही
है। ये तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है जिसको लोग इशा के बाद भी पढ़ लेते थे। हज़रत उमर के ज़माने में वो एक दिन मस्जिद में गए, देखिए वो खुद शरीक नहीं है वहाँ पे, वो भी घर ही में पढ़ते हैं। वो गए और उन्होंने देखा कि मस्जिद में कुछ अजीब सा समा है, यानी दो आदमी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, दो चार ने एक इमाम खड़ा किया हुआ है, क्योंकि कुरान सुनने का लोगों को शौक़ होता था। तो उन्होंने ये ख्याल किया कि ये नज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, चूँकि उनकी तबीयत में डिसिप्लिन बहुत था और वो चाहते थे कि हर चीज़ नज़म के साथ हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम लोगों ने मस्जिद में आना ही है और इशा के बाद ही नमाज़ पढ़नी है तो एक इमाम मुकर्रर कर लो। तो एक इमाम का तकर्रुर उनके कहने के ऊपर कर लिया गया। अब जब एक इमाम मुकर्रर किया जाएगा तो पूछेगा ना कि भाई कितनी रकतें पढ़ाऊँ तुम्हें, तो आम तौर पर लोगों ने कहा कि आप हमें 20 रकतें पढ़ा दीजिए, बल्कि 23।
मगर आपने तो कहा था कि तहज्जुद का जो फिगर है वो ताक है।
जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, बल्कि 23।
अच्छा।
यानी 20 रकतों के बाद 3 रकतों से उसको वितर कर लिया जाता था, ताक बना लिया जाता था। तो 23 रकतें लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद ये एक अलग नमाज की हैसियत से मुतारफ़ होना शुरू हो गई। तो हकीकत में ये तहज्जुद की नमाज है, ये कोई अलग नमाज नहीं है। हुजूर के ज़माने में ये इसी तरह पढ़ी जाती थी। सहाबाए किराम इसको तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ते थे और इशा के बाद भी पढ़ लेते थे। इसके लिए कोई बाकायदा जैसे हमारे यहाँ जमात का अहतमाम होता है, ये हुजूर के ज़माने में नहीं होता था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में नहीं होता था। हज़रत उमर भी खुद शरीक नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ़ लोगों में नज़म पैदा करने के लिए एक इमाम को मुकर्रर कर दिया और उसने एक मखसूस तादाद में ये पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि मज़ीद तारीख़ में ये ज़िक्र मिलता है और रवायतों में ये ज़िक्र मिलता है कि वो आए और उन्होंने देखा अब लोग बहुत नज़म के साथ ये नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया। और तबसरा ये था कि जिसको छोड़ कर ये पढ़ रहे हो, यानी तहज्जुद के वक्त को, वो इससे कहीं अफजल है।
अच्छा।
और वापस चले गए।
अच्छा।
यानी वो ख़ुद भी इसमें शरीक नहीं हुए।
नहीं,
तो सहाबाए किराम के ज़माने में इसकी नौइयत ये थी। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर जिस तरह के एक चीज़ त्यौहार की सूरत इख्तियार कर लेती है, इसने भी ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि बड़े अहतमाम से लोग जाने लग गए। अब लोगों को ये याद भी नहीं है कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है, इसके पढ़ने के आदाब ये हैं, इसका असल वक्त तहज्जुद का वक्त है, ये सब चीज़ें लोग फरामोश करते हैं।
गांधी साहब, लेकिन आपने कहा रसूल अकरम के ज़माने में जब ये वाकया पेश आया तो रमज़ान का महीना था, रसूल अकरम एतकाफ़ में थे, तो लेकिन ये तरावी की नमाज जो कि बाद में बाकायदा बन गई, ये उस वक्त रमज़ान के बाद कंटिन्यू नहीं होती हमें तारीख में नज़र आई, ये सिर्फ रमज़ान में ही मखसूस थी?
नहीं, ये तो तहज्जुद की नमाज है ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए
तो
लोग
सहाबा कराम रोज पढ़ने लग गए थे रमजान के बाद भी?
रमजान के बाद भी पढ़ते थे बहुत से सहाबा कराम। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, रवायतों में आता है, और आपने उनको फरमाया कि तुम कैसे ये नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज, ये आम दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुदा के साथ सरगोशियां करता हूँ और बहुत पस्त आवाज के साथ किरात करता हूँ। तो आपने कहा थोड़ी सी बुलंद कर लो इसकी। और हजरत उमर के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो शैतान को भगाता हूँ और घर वालों को भी जगाता हूँ अपनी किरात से। उन्होंने अपने मिजाज के लिहाज से बताया तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, थोड़ी सी आवाज़ पस्त कर लो।
मगर बाजमात रमज़ान के अलावा हमने नहीं देखा।
बाजमात नमाज तहज्जुद की कभी भी नहीं पढ़ी गई, यानी वही तीन दिन है رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے نماز پڑھی، وہ بھی آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا جماعت کا، یہ دیکھیے ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی پیچھے آ کے جماعت بنا لے، تو یہی صورت پیدا ہوئی. تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، اس کی کبھی جماعت کا اہتمام حضور کے
حضرت
نہیں
عمر کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی یہ ہوتا ہوا نظر آیا پریکٹس،
اس لیے کہ لوگوں کو رمضان کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے. لیکن نا بہت سے لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی تہجد نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں. تو بالکل ایسے ہی ہوا، انسانی فطرت ایسے ہی ہے، یعنی جو چیزیں لازم ہیں وہ تو سارے لوگ اہتمام کریں گے، جو چیزیں نفل ہیں ان کا رمضان میں ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے.
اچھا بریک پر جا رہے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دے دیجیے، تراویح کے لوگ بھی معنی بتا دیں.
دیکھیے جو لوگ جب نماز پڑھتے تھے، کیونکہ لمبی نماز ہے نا، تو اس کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی چار رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے. عربی میں جو بیٹھ کے آرام کرنا اس کو ترویحہ کہتے ہیں.
اچھا.
اور چونکہ اس نماز میں تین چار مرتبہ بیٹھتے ہیں تو ترویحہ کی جمع تراویح ہو گئی، اس سے یہ لفظ بن گیا. ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس لفظ سے لوگ واقف نہیں تھے. اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا تھا یا قیام اللیل کہا جاتا تھا. حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر قیام اللیل کے عنوان سے ہوتا ہے.
تو تاریخ میں کہاں یہ لفظ انٹروڈیوس؟
یہ اس کے بعد جس وقت صحابہ کرام کے زمانے ہی میں لوگوں نے چونکہ بیٹھنا شروع کر دیا، اس بیٹھنے کے دوران میں لوگ کچھ تسبیحات بھی پڑھتے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ادھر جماعت میں چار رکعتیں پڑھ لیں، درمیان میں کچھ اپنے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تو اس سے یہ تراویح کا لفظ لوگوں کے اندر عام ہونا شروع ہو گیا، اور کہیں پہلی صدی میں آ کر یہ لفظ زیادہ عام ہوا ہے. ورنہ لوگ اس کو قیام اللیل کہتے تھے یا صلاۃ اللیل کہتے تھے.
بہت شکریہ غامدی صاحب. مزید سوال بھی آپ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، میرے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں نماز تراویح کے حوالے سے، ہم غامدی صاحب سے کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نماز تراویح کے حوالے سے آج ہم غامدی صاحب سے گفتگو کریں. غامدی صاحب، اس سوال کا جواب بھی آپ کے پہلے سوال میں تقریباً آ ہی چکا ہے کہ نماز کا، تراویح کی نماز کا اور روزے کا آپس میں کیا نسبت بنتی ہے. آپ نے کہا کہ قیام اللیل ہے جو کہ تراویح بنا دی گئی، تو لیکن یہ بتائیے کہ اب ہم لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اس کے بغیر گویا روزہ قبول نہیں ہوتا.
اس یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. روزہ ایک الگ عبادت ہے، جیسے حج ایک الگ عبادت ہے، زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، تو ایسے ہی روزہ الگ عبادت ہے اور نماز ایک الگ عبادت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا اجر بیان کیا ہے، یعنی یہ بھی بتایا ہے کہ روزہ تم پر فرض ہے، اور جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانم و احتسابا، یعنی ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ میری زندگی کیا رہی ہے، میں اس کو کتنا سنوار سکتا ہوں، مجھے آگے کیا کرنا ہے.
آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنی زندگی کا.
اس کے بغیر تو اصل میں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. انسان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتا رہے. تو اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ایمان کے ساتھ اگر کسی نے روزے رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. گناہوں کی بخشش سے پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے مراد ہے وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں. بندوں کے معاملے میں جو گناہ ہو جائے گا اس کی تلافی بھی ضروری ہے، اس کے لیے بندے سے معافی حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بشارت ہے. اسی طرح یہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ من قام رمضان، یعنی جس نے رمضان میں قیام کیا، نماز پڑھی رات کے وقت، اور خاص طور پر نفل نماز، کیونکہ جو عام نمازیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو ہر آدمی کو پڑھنی ہے. تو من قام رمضان ایمانم و احتسابا، اس میں بھی یہی بشارت دی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے لوگوں کے اندر بڑی رغبت پیدا ہوئی کہ وہ رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور وہ رات کے وقت نماز بھی پڑھیں. رات کے وقت نماز پہلے ہی سے موجود تھی، تہجد کی نماز، اس کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جو لوگ صبح کے وقت اٹھ سکتے تھے وہ اسی وقت پڑھتے رہے، جن کو اس میں دقت محسوس ہوتی تھی انہوں نے اجازت چاہی، دے دی گئی، عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے.
اچھا، لیکن ابھی ہم احتساب کی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا نماز سے ہٹ کے سوال ہے، کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو حقوق العباد میں جو کمی بیشی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی بھی کرنی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ندامت ہوتی ہے اپنے کسی کام پر، لیکن ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس شخص کے سامنے جا کے معافی کے خواستگار ہوں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے اس شخص کا، تو کوئی اور طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنا یہ گناہ دھو سکیں؟
دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے جس کی تلافی ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا ہوا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے شرم آتی ہے واپس کرتے ہوئے، وہ تو کرنا پڑے، وہ کرنا پڑے گا. اچھا، یا کسی کو مثال کے طور پر گالی دی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ شرم کا احساس ہو.
ہم غیبت اتنا عام طریقے سے کرتے ہیں، لیکن کسی میں میرا نہیں خیال بعد میں
ہمت نہیں ہوتی جو اس طرح کی بات کر سکے. تو اول تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمت کر کے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ سے اپنی اصلاح کی جائے. ایسا نہ ہو تو کم سے کم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. उसके किसी पीछे रहने वाले के साथ हुस्ने सलूक कर सकते हैं तो वो करें।
सही,
ऐसा होता है ना कि आदमी दुनिया से रुखसत हो गया,
बिल्कुल,
उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, उसके कोई और अज़्ज़ा अक़रबा होंगे, उनसे हमको हुस्ने सलूक कर सकते हैं, करें। असल में जिस चीज़ का एहसास दिलाना मकसूद है वो ये है कि इंसानों के मामले में जब हमसे ज़्यादती होती है तो इसमें एक फरीक खुदा के साथ इंसान भी बन जाता है, इसलिए इसको आसान नहीं लेना चाहिए। और अगर ये चीज़ हम मुसलमानों की समझ में आ जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी मगरबी अकवाम से ज़्यादा बेहतर हो, यानी हम जो उनके यहाँ खूबियाँ देखते हैं वो खूबियाँ सबसे नुमायाँ हमारे यहाँ नज़र आए, फिर हमारे यहाँ लोग एतमाद के साथ कारोबार करेंगे, ये मुसलमान है, कभी धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, इसके यहाँ मिलावट नहीं होगी। लेकिन अब तो बिल्कुल उलट है, यानी मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि देखें, इस वक्त अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके वालिद को कोई शदीद तकलीफ़ हो और उसमें आपको कोई ऐसी दवा चाहिए हो जिस दवा में जीने मरने का इन्हिसार हो, तो फिर आपको बताया जाए कि एक दवा हमारी बनी हुई है और एक अमेरिका की बनी हुई है, किसका इंतखाब करें?
सच्ची बात,
तो ये चीज़ खुद बता रही है, यानी हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम कितनी पस्ती में उतर चुके हैं।
बाज़ हम कहते हैं ना कि वो कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन जो बातें अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है या इस्लाम हमसे उम्मीद करता है वो हमें वहाँ पे ज़्यादा नज़र,
सारे इज्तिमाई अखलाकियात। देखिए, इस्लाम कोई मेरी या आपकी जागीर नहीं है, मीरास नहीं है, इजारा नहीं है, ये एक मैसेज है। यानी देखिए ना, साइंस ने जो तहकीकात की है वो एक मैसेज है ना, उन्होंने बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सवाल ये है कि ये अब वहीं रह जाएगा, ये मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है। तो इसी तरीके से मज़हबी तालीमात भी आला अखलाक की तालीमात है, उनको कोई अंग्रेज़ अपना ले, उनको कोई अमरीकी अपना ले, उसकी तहसीन करनी चाहिए, और अगर हम नहीं अपनाए हुए तो हमें शर्म महसूस करनी चाहिए उसके ऊपर। तो इस वजह से जो लोगों से मुतल्लक गुनाह है इनके बारे में हमको बड़ी तवज्जो दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, बहुत कुछ इस तरह के नेकी के काम कर लेते हैं, हज के लिए भी जाने के लिए कतारें लगी हुई होती हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता कि वो अपने दफ्तर में बैठकर किस तरह से लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो इंसानों के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मुकदमात किए होते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होता। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं ऐसे बहुत से नेकोकार लोगों को जानता हूँ कि जो ज़मीनों पर गलत कब्ज़ा किए हुए होते हैं। अच्छा, इससे तो आगे बढ़िए मज़ीद, बहुत फ़ख्र के साथ हमारे माशरे के अंदर ऐसे उलमा हैं जो ये कहते हैं कि ये मस्जिद हमने कब्जा करके बनाई है।
बहुत सारे,
आप अगर मस्जिदों का जायजा ले, यानी मस्जिद तो खुदा की इबादतगाह है ना,
गसब की हुई जमीन पर,
मस्जिद गसब की हुई जमीन के ऊपर, यानी गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बना के हम फख्र के साथ उसका इजहार कर रहे होते हैं और इस बात का लिहाज नहीं करते। एक आलिम ने यह कहा और टेलीविजन के ऊपर बैठ कर कहा कि ये तो असल में स्टेट की है ना, लोगों की मलकियत है। उसको ये एहसास नहीं हुआ कि एक फ़र्द की मलकियत को गसब करना तो एक फ़र्द का मुकदमा है, ये तो पूरे के पूरे माशरे का मुकदमा है, इसमें तो पूरी कौम आपके ख़िलाफ़ खड़ी होगी क़यामत में। तो रिसालत में आप ने फरमाया कि जिसने एक बालिश्त के बराबर ज़मीन किसी की गसब कर ली तो क़यामत में उसके गले में तौक बनाकर डाल दी जाएगी।
तो
इन चीज़ों के बारे में रमज़ान में सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लोगों को एहतसाब करना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने आपको उस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई जिसमें यह कहा गया है कि यूँ नहीं है कि आपने महज नमाज़ पढ़ी, मन कामा रमज़ाना ईमानन व एहतसाबा, यानी आप तरावी के दौरान में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बैठ कर आपको क्या करना चाहिए, अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं करके क्या आया हूँ, आज दिन भर मैंने क्या किया है, आगे क्या करने के मंसूबे बना के आया हूँ। सियासतदानों को सोचना चाहिए वो कौम को धोखा देने के क्या मंसूबे बना रहे हैं।
बड़ी अहम बात है।
तो इस वजह से हर आदमी को अपना मुहासबा करके देखना चाहिए। अगर ये हम मुहासबा नहीं करेंगे अपना, तो फिर हमारा यही हाल होगा कि नमाजें बहुत होंगी लेकिन उनकी रूह ख़त्म हो चुकी होगी। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है।
आमदी साहब, आपने थोड़ा सा जवाब तो उसका दे दिया है कि किस तरह ये रकतें पढ़ती गईं, चूँकि कुरान पाक लोगों को याद नहीं होता था, लेकिन अब हमने देखा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 20 रकत नमाज पढ़ने की, तो क्या यही अफजल है या कम पेशी हो?
अब दो रवैये हैं, एक रवैया वो है जो मिसाल के तौर पर अहले हदीस हज़रात हमारे यहाँ इख्तियार करते हैं, वो इसरार करते हैं इस बात के ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लम ने चूँकि 11 से ज़्यादा रकतें नहीं पढ़ी तो 11 पढ़नी चाहिए। और हमारे यहाँ जो हनफ़ी हैं या दूसरे बाद अइम्मा के पैरों हैं, वो ये समझते हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में चूँकि 23 रकत पढ़ने का रिवाज हो गया था, ये 20 रकतें अलग होती हैं और तीन उनमें वितर मिला लिए जाते हैं, 23 होती हैं हकीकत में, तो वो ये कहते हैं कि ये पढ़नी चाहिए, ये दो हैं। जबकि तहकीक की निगाह से देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि 3 पढ़ी जा सकती हैं, 5 पढ़ी जा सकती हैं, 7 पढ़ी जा सकती हैं, 9 पढ़ी जा सकती हैं, 11 पढ़ी जा सकती हैं, 23 पढ़ी जा सकती हैं। इमाम मालिक ये कहते हैं कि उनके ज़माने में मदीने में 49 रकतें तक पढ़ी जाती थी।
अच्छा,
तो इस वजह से ये महज एक झगड़ा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसी वजह से देखें दीन के अंदर कितनी खूबी रखी गई है, हो सकता है कि आप में इतनी हिम्मत हो कि आप 3 रकतें पढ़ लें, तो आप भी उसमें, ये जो आप देखती है ना, ये इशा की नमाज़ में बताया जाता है 3 वितर है, ये तहज्जुदी की नमाज़ है, यानी उसी नमाज का एक हिस्सा है 3 रकतें, जो कम से कम है, जिनको आम दिनों में भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो नमाज़ फ़र्ज़ है हमारे ऊपर ईशा की, वो तो 4 रकत ही है।
सही।
आपने अगर 4 रकत पढ़ ली तो उसके बाद अब अल्लाह के सामने जवाबदेह हो गए। इसके बाद जो कुछ है वो नफल है, तो नफल नमाज की हैसियत से लोग बितर भी पढ़ते
तो
हैं।
अगर कोई शख्स रमज़ान में, क्योंकि सब अहतमाम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, कि तहज्जुद की नमाज़ अलग से पढ़े और देर से पढ़े और कुरान पाक की अलग से तिलावत करे, उसको आप कैसे देखते हैं तरावी
देखो
के
कोई
नमाज?
हर्ज की बात नहीं। देखिए चूंकि आम तौर पर लोगों को कुरान इतना याद नहीं होता, वैसे तो इस मसले को अल्लाह
क्योंकि
ताला ने
आपने कहा
आप
हजरत उमर ने खुद कहा कि इससे बेहतर वो
ये
वक्त है
वक्त तो वही
उनके।
बेहतर है, इसलिए कि असल वक्त तो वही है। देखिए ये तो लोगों ने अपनी माजूरी जाहिर करके कि हमारे लिए मुश्किल
मुश्किल
होता है,
होगा।
और आप देखती हैं कि दुनिया के अंदर सारे इंसान यकसा नहीं होते,
बिल्कुल
यानी बाज़ लोग ज़्यादा मशक्क़त उठा लेते
सही
हैं, बड़ी अजीमत पर ज़िंदगी बसर करते हैं, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए रुख्सत का कोई सामान कर
सही
दिया जाए। तो
और
उन्होंने
ना
पूछा
करें इससे बेहतर है कि
इससे
अगर
बेहतर,
इजाज़त मिल
तो
जाए
अगर
तो।
इजाज़त मिल गई तो लोगों ने इस वक्त पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं ना कि सारा दिन मेहनत मशक्क़त करके आए हैं, सुबह के वक्त उठना मुश्किल है। ऐसे लोग भी थे, यानी सहाबाए किराम में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है कि वो फजर की नमाज़ के लिए उठना मुश्किल होता था। ऐसे लोगों की बाज़ वक़्त उनकी बीवियों ने शिकायत की हुजूर से, ये तो सुबह के वक्त भी नहीं उठते हैं, तो हुजूर ने ये फरमाया कि जिस वक्त उठो वही वक्त नमाज का वक्त है। देखिए इसमें भी बड़ी रहमत और बड़ी शफ़क़त है।
अच्छा।
आप अंदाज़ा कीजिए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे खैबर के सफ़र से, तो रास्ते में बहुत ताखीर हो गई, लश्कर को हुक्म दिया गया कि पड़ाव डालने, पड़ाव डाला गया तो सब लोग बहुत थके हुए थे। तो हुजूर ने बिलाल से कहा रज़ी अल्लाह अन्हु कि ज़रा ख्याल रखना फजर की नमाज़ कहीं हमारी चली ना जाए। सब लोग सो गए, बिलाल भी सो गए, सब लोगों की आँख उस वक्त खुली, ये मुअत्ता में बड़ी तफसीली ये रवायत बयान हुई है,
वक्त निकल
आँख
गया।
उस वक्त खुली जबकि सूरज निकल आया हुआ था।
ओहो।
तो हुजूर ने फौरी तौर पर लोगों को वज़ू करने के लिए कहा और नमाज़ की इमामत कराई।
अच्छा।
अब नमाज़ पढ़ाने के बाद जब आप बैठ गए तो एक साहब आए और उन्होंने आके ये कहा कि या रसूलल्लाह आज तो बहुत बड़ी कोताही हो गई। ज़ाहिर है कि नमाज़ चली गई थी, और नमाज़ चली भी किस तरीके से गई थी कि दिन निकल आया था, सूरज निकल आया था, यानी आप ख्याल करें कि कोई 8-9 बज गए थे जिस वक्त
सही।
लोगों ने नमाज़ पढ़ी। तो हुजूर से उन्होंने कहा कि आज बड़ी गलती हो गई, तो आपने फरमाया इन्नमत तफरीद फिल यकज़ा लैसत तफरीद फिल नौम, गलती और कोताही जागते में होती है, सोते में नहीं होती।
अच्छा।
और इस तरह गोया ये चीज़ वाज़े कर दी कि जिस वक्त आप, एक तो ये ना कि आप जानबूझ के तय कर लें कि मुझे नहीं उठना,
उठना ही नहीं
एक
है।
यह कि नहीं आँख खुली,
सही
आप दिन में भी मिसाल के तौर पर
सही
आप जोहर के बाद लेटे और
सही
सो गए और आँख खुली तो मगरिब के करीब का वक्त हो
सही
रहा, तो अब जो नमाज़ आप पढ़ेंगे वो कज़ा नहीं होगी। यानी जिस
अच्छा
वक्त आपकी आँख खुली उसी वक्त जो नमाज़ आपने पढ़ी है वो आपकी अदा नमाज़ है।
सही।
तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े कर दिया कि नमाज़ कज़ा नहीं हुई, इसलिए कि हम जानते बूझते नहीं सोते रहे, आँख
अच्छा
नहीं खुली, तो जो वक्त हमारा आँख खुलने का है वही नमाज़ का वक्त है। इंसानी मामलात की हमारे दीन में इतनी रियायत रखी गई
सही।
है,
मतलब
अल्लाह की इतनी शफ़क़त है।
वही कि हमें मजबूर नहीं किया गया, हमारी कमियों का भी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने एहसास
ऐसा ही है,
किया
बिल्कुल
है,
हर चीज़ का लिहाज रखा गया। और
कोई जबर नहीं है हम पे
अल्लाह
भी इसका।
ताला जब अहकाम देते हैं कुरान मजीद में तो कहते हैं कि युरीदुल्लाह बिकुमुल युसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो
सही।
तुम्हें किसी मशक्क़त में नहीं डालना
रहमत ही
चाहता,
रहमत है। सुभान
रहमत ही
अल्लाह।
रहमत है।
बहुत खूब।
असल चीज़ ये है कि बंदे के अंदर सरकशी ना हो। देखिए ना कोताही तो मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हर इंसान से होती है, एक एक कोताही हो जाना और एक एक खुदा के मुकाबले में सरकश हो जाना, तो सरकशी वो चीज़ है कि जो खुदा के हर नाकाबले माफ़ी है, वरना तो तौबा ही तौबा है, माफ़ी ही माफ़ी
माफी
है,
है।
रहमत ही रहमत है,
सुभान
शफकत ही
अल्लाह।
शफकत है, यही
बहुत
चीज़
खूब। सलामती साहब, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के आने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम सब तरावी का अहतमाम भी करते हैं, ख़वातीन भी घरों में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कुरान पाक का ख़त्म करती हैं रमज़ान में, लेकिन हम सब ये अरबी में पढ़ रहे होते हैं और ये मैसेज हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। रमज़ान का महीना, ऐसी मुनासबत से हम नमाज तरावी के हवाले से गांधी साहब से आज सवालात कर रहे हैं। गांधी साहब, कुरान मजीद का नुजूल तो हम सबकी हिदायत के लिए किया गया है, रमज़ान में हमारा मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटे, क्योंकि एक एक नेकी का कई कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो इसी तरह हम देखते हैं तरावी में भी कुरान ख़त्म किया जा रहा होता है, हम तेज़ तेज़ ख़वातीन घरों पर भी अपने ख़त्म कुरान का इंतज़ाम कर रही होती हैं, तो सवाब तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन असल अफजल क्या है कि हम इसका पैगाम को समझें और पढ़ें या इसकी
इस
तिलावत
सवाल
करते
का
रहे।
जवाब खुद कुरान मजीद ने दे दिया है। देखिए कुरान ये कहता है कि किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अल्बाब। ये किताब इसलिए नाजिल की गई है, ये बड़ी बाबरकत किताब है, इसलिए नाजिल की गई है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करके इसको समझें और इससे अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। तो ये किताब के नज़ूल का मकसद है। अगर हमने इसको समझा नहीं, इसकी आयतों पर गौर नहीं किया, इसमें अल्लाह का जो पैगाम दिया गया उसको वसूल नहीं किया, تو یہ خود اس کتاب کے ساتھ اہانت آمیز رویہ ہے.
عقل والے غور کریں تو اس کا مطلب ہم اپنی عقل ہی نہیں استعمال کر
عقل
رہے
استعمال
کے
لیے. یہ ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ بچپن ہی میں اس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان کے لیے سمجھنے کی کتاب بنتی نہیں. میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا ہر بچے کو سیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور قرآن مجید کا جو اسٹرکچر ہے, جس طریقے سے قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے, اس سے جو الفاظ کی خوبصورتی وجود میں آئی ہے اس کو کوئی ترجمہ نہیں بیان کر سکتا. ان کے اندر بڑی موسیقیت ہے, ان کے اندر بڑا آہنگ ہے, یعنی حیرت انگیز چیز ہے قرآن مجید. ایک عالم نے بیان کیا ہے کہ طرابلس میں جو ایک مشہور کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف مذاہب کے بڑے لوگ شریک ہوئے, تو اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اتنی مذہبی کتابیں ہیں کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے, تو ہر مذہبی کتاب کا ایک پورشن لوگ خود منتخب کریں گے, ایک حصہ, اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حیرت انگیز چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کو پڑھا جا رہا تھا, یعنی تورات کا کچھ حصہ پڑھا گیا, زبور کا کچھ حصہ پڑھا گیا, تو لوگوں نے سنا, لیکن جس وقت قرآن مجید پڑھا گیا تو اس کی موسیقیت اور آہنگ اتنا غیر معمولی تھا کہ سب کے سب لوگ بالکل حیران ہو کر سننے لگ گئے اس کو, یعنی غیر مسلم بھی جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا. اس کی یہ خوبصورتی ہے. وہ تو اس وجہ سے عربی زبان میں قرآن لوگ پڑھنا سیکھے, اس میں کوئی شک نہیں, اس سے انسان کو بڑی ایک روحانی تقویت ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں.
ثواب کا پہلو بھی شاید اس لیے رکھا کہ لوگ غور کریں تو ان کو ثواب.
ہر نیکی کے اندر جو اجر ہوتا ہے وہ اجر تو بعد کا مسئلہ ہے, پہلی چیز تو یہ کہ نیکی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو چار پیسے دیتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, تو یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے نا. کام اگر درست نہیں ہوا, بہت سے لوگ بڑی ایک دلچسپ بات بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر 10 نیکی ہیں, تو اگر آپ نے ہر لفظ کو پڑھ لیا تو لفظ سے جملہ تو بنا نہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے میں فرض کر لیجئے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجئے, آپ کے ہر قدم پر میں آپ کو 10 روپے دوں گا, اور آپ ایک قدم اٹھا کے رک جائیں دے دوں گا.
نہیں,
آپ کو اصل میں وہ سارے قدم اٹھا کے مجھ تک پانی پہنچانا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کا جو فہم ہے, مدعا ہے, اس کو پہنچانا ہے پہلے اپنے دل و دماغ تک, پھر اجر ملے گا. یعنی اجر اس طرح نہیں ملے گا.
تو یہ ہماری اسپیشلی خواتین کے لیے, میری والدہ بھی ہیں, سب کی گھر میں خواتین بڑے شوق سے پڑھتی ہیں, ان کے لیے ایک دفعہ بتا دیں آپ کہ لوگوں میں عموماً خیال ہی کیا جاتا ہے کہ جی اگر تلاوت نہیں کی عربی میں تو شاید ثواب نہیں ملے گا.
نہیں نہیں, کیوں نہیں ملے گا. دیکھیے آپ نے قرآن
بہترین مہینہ ہے,
اس میں قرآن کو سمجھنا چاہیے, بلکہ جو لوگ عربی زبان کا تلفظ ٹھیک ادا نہیں کر سکتے وہ ترجمہ ہی پڑھے. بڑے اچھے علماء نے ترجمے کیوں ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا, ہر مکتب فکر کے علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک مکتب فکر ہے جو ترجمہ کرتا ہے باقی نہیں کرتے. دیوبندیوں نے ترجمے کیے ہیں, بریلویوں نے ترجمے کیے ہیں, اہل حدیث نے ترجمے کیے ہیں, اہل تشیع نے ترجمے کیے ہیں, سب لوگوں نے کیے ہیں. تو جب سب کے ترجمے موجود ہیں تو ان علماء نے کیوں ترجمے کیے؟ اسی لیے کہ تاکہ قرآن کا میسج, پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے. تو ترجمہ پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کی کتاب میں ہے کیا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک تو قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ جو دعوت اور تبلیغ اور بعض قسم کی ہم تقریریں کرتے ہیں, ایک ہے تعلیم دینا, یہ اور چیز ہے. اس کے لیے استعمال ہی قرآن کو کرنا چاہیے. قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ ذکر بالقرآن میں یخاف و وعید, آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں. تو لوگوں کو نصیحت تو تبھی ہوگی جب ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. اچھا, قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ نذیر للعالمین, یعنی یہ خبردار کرنے والی کتاب ہے ساری دنیا کو. تو ساری دنیا تک اس کو, اس کے ترجمے کو پہنچنا چاہیے, کیونکہ سارے لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے اس کے انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں, اردو میں ترجمے ہوئے ہیں. ان ترجموں کو عام کرنا چاہیے, اور قرآن مجید ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے, بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے, بڑوں کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ کم سے کم ترجمہ پڑھ لیں. میں نے زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں تھا, ان کو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور ان کی زندگی تبدیل ہو.
کیا بات ہے, اور کیا لطف آتا ہے جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو خدا کے پیغام کی. ایک مرتبہ پھر نماز تراویح کی ہسٹری کی جانب آئیں گے. غامدی صاحب, کوئی ہسٹری میں ہم کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں؟ آپ نے پہلے بتایا کہ رسول اکرم اعتکاف میں تھے, باہر آئے, انہوں نے بیسیکلی تہجد کی نماز تھی جیسے پڑھایا. کوئی اور اگزامپل ایسا ہمیں دکھتا ہے کہ انہوں نے الگ الگ نماز تراویح, جس کو آپ کہتے ہیں, یہ ادا کی اور تہجد الگ سے؟
ایسا کوئی موقع رسالت میں آپ سے, یہی 3 دن ہیں, یعنی ان 3 دنوں میں بھی آپ دیکھیں اس میں حدیث میں الفاظ میں فی جوف اللیل, آدھی رات کے وقت, عشاء کے بعد نہیں ہوا یہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے, اس کے بعد تہجد کے لیے آپ آدھی رات کے وقت اٹھے. مسجد میں چند لوگ موجود تھے, غالباً اعتکافی کے لیے بیٹھے ہوں گے, انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کی نماز پڑھی. اگلے دن لوگ آ گئے, پھر اگلے دن لوگ آ گئے, پھر حضور نہیں تشریف لائے, یہاں تک کہ فجر کی نماز کے وقت آپ خیمے سے باہر نکلے, نماز پڑھائی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس کی وجہ یہ تھی.
تاکید. اور لیکن اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں حضرت عمر کا زمانہ پہلا تھا کہ جہاں انہوں نے کہا اور کہہ کے چلے گئے کہ بہتر ہے کہ بات
انہوں نے خود بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا.
ایگزیکٹلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی کوئی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ماں حضرت عمر نے جو ہے امامت کی ہو یا وہ شریک ہوئے ہوں یا ان کے بعد خلفائے راشدین آئے انہوں نے.
نہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ حضرت ابو بکر صدیق. نہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی 2.5 سال کا رہا. حضرت عمر بھی, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ تبصرہ کر کے واپس چلے گئے. یہ ساری کی ساری تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اس میں ان کا تبصرہ بھی نقل ہوا ہے.
اور یہ بھی بتائیے کہ ہر تراویح جو کی جاتی ہے 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ, ایک پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے, اس کی کوئی تاکید ہے, کوئی وجہ ہے؟
یہ روایت بن گئی ہے ہمارے ہاں. قرآن مجید آپ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ورنہ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا اس میں تو بعض اوقات میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہوتی کہ وہ قرآن سنیں. یعنی ایک ہوا کی رفتار ہے جس کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے, دیہات میں خاص طور پر. یعنی عالم جب یا کوئی قاری آگے پڑھ رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور پیچھے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی بس یہ کہ اونگ رہے ہیں, اس کے بعد رکوع میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. تو یہ اطمینان کے ساتھ قرآن کے بارے میں ہم کو حکم دیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اچھا, اور کیا تراویح کی نماز صرف جماعت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے یا اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں؟
تہجد کی نماز ہے نا, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الگ کوئی نماز نہیں, تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کی جماعت حضور نے گوارا فرمائی
تھی,
تو اس وجہ سے جماعت آپ کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے بھی جماعت سے نہیں روکا.
الگ سے پڑھنا چاہیں گھر کی,
الگ سے پڑھنا ہی بہتر ہے. دیکھیے تہجد کی نماز میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ الگ سے پڑھیں, خلوت میں پڑھیں, اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کریں. یہ مناجات کا وقت ہے, کوئی ایک نماز تو ایسی ہو کہ جس میں ہم ہوں اور ہمارا پروردگار ہو, تو اس وجہ سے اس کا اصل وقت وہی ہے. حضرت عمر نے بھی جو تبصرہ کیا کہ افضل و من اللتی تنامون, یعنی جس کو چھوڑ کر اس کو پڑھ رہے ہیں وہ اس سے افضل ہے.
صحیح. اچھا, خواتین اور مردوں کے لیے کوئی الگ سے اس میں حکم ہے یا خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟
خواتین عبادات کے معاملے میں خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. دیکھیے ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے, وہ کریں, اپنے اہتمام سے کریں. فرض کر لیجئے کہ ان کے ہاں بھی قرآن مجید یاد نہیں ہوتا. دیکھیے جماعت کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس میں جماعت کی ضرورت یہاں سے پیدا ہوتی ہے, کسی ایک کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی اس کو کھڑا کر لیں, وہ پڑھ لیں. ہر آدمی کو قرآن اس طرح یاد نہیں ہوتا, تو خواتین اپنا اہتمام کر سکتی ہیں. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے گاؤں میں تو نماز تہجد کا بھی, تراویح کا بھی اور جمعہ کا بھی خواتین الگ سے ایک مسجد میں اہتمام کرتی تھیں, مسجد ہی ان کے لیے خاص تھی. تو ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا تھا. اب تو ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ خواتین بازاروں میں جب چاہیں نکلیں, لیکن یہ کہ مسجد میں آنے کی جسارت نہ کریں.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں تو باقاعدہ خواتین کے لیے مساجد میں حصہ رکھا جاتا ہے.
ہمارے ہم رکھتے ہیں, ہمارے ہم بھی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور حضور نے تو دیکھیں کوئی الگ ہال بھی نہیں بنایا تھا. خواتین اسی مسجد میں جاتی تھی, وہیں خطبہ سنتی تھی, وہیں بیٹھتی تھی. مسجد نبی میں ان کے لیے کوئی الگ بندوبست نہیں کیا.
ایسا کیوں ہے کہ اسپیشلی ہمارے خطے میں, ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو بالکل یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے, بلکہ علماء کرام اس کو انکرج بھی نہیں کرتے؟
یہ میں بالکل نہیں سمجھ سکا. سچی بات یہ ہے کہ اگر خواتین کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا, اگر وہ وہاں نہیں جائیں گی, تو ان کے اندر جو ایک دینداری کی روح ہے وہ کس طرح قائم رکھی جائے گی؟ یعنی مسجد ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے, بڑی روحانی چیز ہے. اس میں جب آپ جاتے ہیں وہاں ایک ماحول ہوتا ہے. آپ حرم میں جائیں تو حرم میں کیا آپ کے لیے الگ کوئی جگہ بنائی گئی ہے؟ خواتین جاتی ہیں, طواف کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں. بسا اوقات عین طواف کے دوران میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے دائیں یا بائیں خواتین موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہو گئیں, خاص طور پر بر صغیر میں. ورنہ نماز پڑھیں, خواتین جائیں بیٹھیں. میں نے تو کئی حدیثوں میں یہ دیکھا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد سے پوچھ رہی ہے کہ میں بات پوری طرح سن نہیں سکی, حضور کیا فرمایا, ذرا گدھورا دیجیے.
اچھا,
عید کے موقع کے اوپر خواتین نے کہا کہ ہمارے لیے تو بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھنا ہوتی, تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, تم خطبہ سناؤ آؤ. یعنی ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں, وہ آئیں. اور اس میں بھی کیا کیا جاتا تھا, اس طرح سے صفحے بنا دی جاتی تھی, ادھر خواتین ہیں ادھر مرد ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مردوں سے الگ گفتگو کی, پھر خواتین کے سامنے جا کے الگ گفتگو کی. تو یہ خواتین کو ہمیں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے دین میں, دین کی باتوں میں, ان سب چیزوں میں.
ممنوع کر دیا, بلکہ رسول اکرم کے زمانے میں خواتین مسجد نبی اپنے سوالات بھی
سوالات کرتی تھیں, جاتی تھیں, پوچھتی تھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں, صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں, راستے میں چلتے ہوئے سوالات پوچھتی تھیں. یعنی یہ جو ہمارا ماحول ہے, جو ہماری معاشرت ہے, بنیادی طور پر ہندوستان کی معاشرت ہے. اور ہر کلچر کا اثر ہوتا ہے, تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے. ورنہ یہ کہ عربوں میں इसका कोई सवाल नहीं था। ख्वातीन सब मामलात अंजाम देती थी तहजीब के साथ, अच्छा लिबास पहन के, शराफत के साथ, जो दीन के बताए हुए हुदूद हैं उनके अंदर रहते हुए।
सही, तो ये आपने कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट की तहजीब है जो हमने इनहेरिट की है, अरबों की तहजीब हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज़ में नज़र आती है, इसके अलावा जो मुस्लिम दुनिया इंडोनेशिया मलेशिया उसके बारे में थोड़ी सी हमें।
बड़ी हद तक सूरत हाल बहुत अच्छी है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं मलेशिया में रहता हूँ, वहाँ ख्वातीन इतनी बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स के अंदर नमाज़ पढ़ रही होती हैं कि मर्द उतनी तादाद में नहीं पढ़ रहे। यानी अगर आप जाए, सुराव कहते हैं वो आमतौर पर प्रेयर रूम को,
अच्छा।
और ये लाजिम है कि हर जगह होने चाहिए।
सही।
उनमें ख्वातीन का अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। ख्वातीन के प्रेयर रूम के बाहर कतारें लगी हुई होती हैं ख्वातीन। हमारे यहाँ कोई तसव्वुर कर सकता है इस बात का? और आप देखिए कि वहाँ पर दूसरे मज़ाहब के बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, यानी कोई 30-35% करीब चीनी हैं। चीनियों में मसीही भी हैं, बुद्ध भी हैं, और बहुत से चीनी मज़ाहब के मानने वाले भी हैं। इसी तरह 10-11% करीब हिंदू हैं। इस सब कुछ के बावजूद कि उनकी माशरत अलग है, उनकी तहजीब अलग है, उनका लिबास अलग है, वो ये ख्वातीन अपने अपने कल्चर और अपनी तहजीब को पूरी तरह कायम रखे हुए हैं और ज़िंदगी के हर मामले में कर रही हैं। रात के 1 बजे आप किसी सड़क पर जा रहे होते हैं, टॉल में खातून बैठी हुई है और वही आपके साथ मामला कर रही है। तो ख्वातीन के ऊपर ये दरवाज़े बंद कर देने का जो तरीका हमने इख्तियार किया है, ये मालूम नहीं कहाँ से आया है। ये ना इस्लाम ने बताया था, ना हमारी तहजीब ने बताया था, ये चीज़ हमारे यहाँ पैदा हुई है और अब लोग इसमें बड़े हसास से हो गए।
सही बात, बहुत शुक्रिया गांधी साहब, बहुत सारी हमारी मालूमात में इजाफा है, बहुत सारे सवाल थे जो कि हम उलमाए कराम से आमतौर पर पूछते हुए घबराते हैं, आपने उनका बहुत आराम से हमें जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, रमज़ान का महीना है, गांधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, नमाज तरावी जो है हज़रत उमर के दौर से ज़रूर शुरू हुई, लेकिन गांधी साहब ने जैसे कि हमें बताया कि हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि खुद हज़रत उमर इसमें शरीक हुए, और उनका कहना था कि जो नमाज़ छोड़ कर ये पढ़ रहे हो वो इससे ज़्यादा अफजल है। ज़रूर पढ़ें तरावी की नमाज़, कुरान पाक का ख़त्म करें, लेकिन इसका मकसद हमें अल्लाह का पैगाम समझना होना चाहिए। और जैसे कि गांधी साहब ने कहा कि इस महीने में बेहतरीन अमल यह है कि जब आप तरावी के दरमियान ब्रेक लें या जब जब आपको मौका मिले अपनी ज़ात का एहतसाब करें और हम सब एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।